ओम शांति। आज मुरली में बाबा ने माया को याद किया है। वरदान में बाबा ने कहा है, माया आती है और फिर दूर से ही उसको भगा दो। माया अंत तक आती रहेगी। बाबा ने हमेशा मुरलियों में बाबा कहते हैं कि माया छोड़ेगी नहीं, अंत तक आती रहेगी अनेक अनेक रूपों में। जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे जाते हैं, ज्ञान की धारणा होती जाती है, ज्ञान भी सूक्ष्म और गुह्य होता जाता है, उसी प्रकार माया भी जो है वो गुह्य और सूक्ष्म होती जाती है। तो आज के मुरली के वरदान में बाबा ने कहा है कि माया को परखने का साधन है साइलेंस। जितना आप साइलेंस में रहेंगे तो परख सकते हैं ये माया है या क्या है। तो बाबा ने कहा है कि माया आती है और उसे भगाने में टाइम भी फिर जाता है। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि माया आती है और बच्चे फिर माया को चाय कॉफी भी चाय पानी भी पिलाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कॉफी नहीं चाय पानी, माया आ गई माया आ गई। तो बाबा ने कहा कि माया को दूर से ही परख कर उसे भगा दो ताकि उसमें भी टाइम वेस्ट न हो। तो आज का जो टॉपिक है एम की माया, एम माना अल्फाबेट जो है एलिमेंट एम की माया। तो इसमें हम देखेंगे कि माया कौन से रूपों से ब्राह्मण बच्चों को आती है। तो जैसे महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं कि जब तक भीष्म पितामह जो इनके कौरवों के सेनापति थे तो उन्होंने एक नियम बनाया था, या जैसे क्षत्रियों का भी नियम बताते हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं लड़ाई के कि लड़ाई जो है सवेरे सूरज उगने से लेकर सूरज जब तक ढलता नहीं है उसके बीच में ही होगी लड़ाई। और जो जिस प्रकार का व्यक्ति है, अगर कोई हाथी सवार है तो हाथी सवार के साथ में ही लड़ाई लड़ेगा, अगर कोई घोड़े सवार है तो वो घोड़े सवार के साथ में लड़ाई लड़ेगा, कोई पैदल वाला है तो पैदल के साथ में लड़ाई लड़ेगा। ऐसा नहीं कि घोड़े सवार हाथी के साथ में लड़ाई करे हाथी वाले के साथ, ये हाथी वाला जो है घोड़े सवार के साथ लड़ाई करे। और जो निहत्था होता है, जिसके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, उसके पर कोई भी अटैक नहीं करेगा, उस पर कोई वार नहीं करेगा। अगर कोई बीमार है या किसी को कोई ये हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, मूर्छित हो गया समझिए, तो उस पर भी कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो ऐसे कुछ नियम बनाए थे भीष्म पितामह ने, या जैसे बताया क्षत्रियों के नियम होते हैं। लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह उस लड़ाई से साइड में हो गए, मतलब जब बाणों की शैया पर लेट के वो निकल गए वहां से मैदान से, तो उसके बाद में सारे नियम कायदे धीरे धीरे टूटने शुरू हो गए। तो उसके बाद में फिर पांडवों ने भी धीरे धीरे नियम कायदे तोड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि लड़ाई जीतनी होती है। जैसे कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड दिस इज वर्ल्ड वॉर। हमारी जो लड़ाई है माया के साथ में, सारे संसार को जीतने की लड़ाई है, तो ये वर्ल्ड वॉर है हमारी माया के साथ में। तो इसमें भी माया अंत तक अलग अलग रूपों में आती रहेगी। जैसे बाबा कहते हैं कि माया जो है रुस्तम के साथ रुस्तम होकर लड़ती है। जैसे बताते हैं ना, कोई मैच वगैरह होता है तो उसमें अगर कोई दो टीमें होती है, अच्छी भारी टीमें, तो ऑडियंस को भी मजा आता है और उन टीमों जो टीम वाले होते हैं उनको भी मजा आता है आपस में कि अच्छी तगड़ी टीम है। अगर कोई कमजोर टीम है और उसके सामने कोई अच्छी टीम है तो टीम वालों को इतना मजा नहीं आएगा। तो उनको हाँ ये लगता है कि इनको तो हम आसानी से हरा देंगे। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जिसको हम छोटा समझते हैं वो भी भारी पड़ जाता है। जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, कोई भी बहुत सारी मैचेस देखते हैं, होता है उसमें कि छोटी से छोटी टीम जिसको हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, वो भी बड़ी टीम को हरा देते हैं। जैसे माया बाबा मुरलियों में कहते हैं कि माया जो है हाथी के कान में चली जाती है। ये छोटी सी चींटी का बाबा एग्जांपल देते हैं कि चींटी हाथी के कान में जाके हाथी से जो है पूरा तांडव करवा सकती है। तो माया जो इतनी छोटी सी है वो भी बड़े से बड़े महारथी को भी गिरा सकती है। तो जैसे अलग अलग इसमें माया के लिए अलग बातें बताई हुई है। कई लोग माया के लिए बताते हैं कि माया जो है ब्रह्म जाल कहते हैं, इसे कोई इंद्रजाल भी कहते हैं, कोई आभास कहते हैं, कोई जादू टोना भी कहते हैं इसे, कि जो चीज नहीं है लेकिन उसका हमें भ्रम होता है। तो भ्रम जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो है वस्तु भ्रम और एक है मति भ्रम। वस्तु भ्रम जो होता है कि वस्तु नहीं है लेकिन हमें वो चीज दिखाई देती है, या हमें आभास होता है कि वो वस्तु है, तो वो होता है वस्तु भ्रम। और दूसरा होता है मति भ्रम। मति भ्रम माना हमारी बुद्धि ही उस तरह से घूम जाती है, या बुद्धि में उस तरह से थॉट चलने शुरू हो जाते हैं, तो उसे मति भ्रम कहते हैं। तो माया भी जो है कुछ उस तरह से, जैसे बाबा कहता नहीं कि माया कुछ है नहीं लेकिन आपकी ही कमी कमजोरी है। तो माया जो है हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, चकरा देती है, हम सही और गलत अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो उस समय उसको माया कहते हैं। तो जैसे बताया माया को अलग अलग इसमें लोग अलग अलग कहते हैं, जैसे माँ या, तो कई इसमें बताते हैं माँ माना नहीं और या माना है, जो नहीं है वो है माया, लेकिन उसका हमें आभास होता है कि वो माया है। कई इसमें बताते हैं माया, माँ माना मोह के लिए बताते हैं, और या माना प्रापण, प्रापण माना जो प्राप्त कराने वाला है, तो जो मोह को प्राप्त कराते हैं वो है माया। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्थूल चीजें ही मोह में आए, कि किसी खाने पीने का मोह है, अलग अलग चीजों का मोह होता है, कपड़ों का मोह होता है, किसी भी रिश्तों में संबंधों में मोह होता है, लेकिन हर एक वो चीज जहां पे हमारी बुद्धि जा रही है, जहां पे जाना नहीं चाहिए बुद्धि को, लेकिन अनावश्यक रूप में हमारी बुद्धि वहां पे जा रही है, तो वो है माया। तो अलग अलग इसमें माया के अलग अलग बताते हैं, डेफिनेशन बताते हैं। तो ये है माया के, कुछ माया के बारे में। अब हम देखेंगे कि एम की माया क्या होती है, जो ब्राह्मणों में आजकल ज्यादा देखी जाती है अलग अलग रूपों में। तो कुछ पॉइंट चर्निंग किए हुए उसके में से निकाले हुए कि सचमुच माया क्या है, जिसे जैसे बाबा कहता है कि परख कर उसे दूर से ही भगा दो। तो सबसे पहला जो लिया हुआ है एम से, मोबाइल। जैसे बाबा ने कहा कि अंत तक माया छोड़ेगी नहीं, तो आज के डेट में माया जो है हर एक के हाथ में आ गई है, वो है मोबाइल। किसी के पास नहीं भी है अगर मोबाइल, तो उसे लगता है कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, या स्टेटस सिंबल हो गया, जैसे मोबाइल जैसे अधूरा जैसे लगता है, आउटडेटेड हो गया। सबके पास अच्छे अच्छे मोबाइल है और हमारे पास नहीं है ना, स्मार्टफोन जैसे कहते हैं। तो आजकल फोन स्मार्ट होते जा रहे हैं और लोग बुद्धू होते जा रहे हैं। तो हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है, वो सवेरे से लेकर रात तक उसी में लगे रहते हैं। अच्छा है, सेवा के हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छी चीज भी है, लेकिन किसी भी चीज पे अगर हमारी डिपेंडेंसी है तो वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर आप दिन भर क्लासेस सुन रहे हैं कान में ईयरफोन लगा के या जैसे भी, लेकिन एक दिन ट्राई कीजिए कि आप बिना मोबाइल के भी, बिना कोई क्लास सुने भी, आपका चिंतन कैसे चलता है, आपका योग कैसे चलता है, आपका पुरुषार्थ कैसे होता है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि आगे जाके सारे साइंस के साधन ये फेल हो जाएंगे, है ना। जैसे पुरुषार्थ के लिए अच्छा है, लेकिन अगर हम उसी पर डिपेंड हो गए हैं तो वो ठीक नहीं है ना। जैसे बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा 33 वर्ष में अव्यक्त हुए, संपूर्ण बने। मुझे लगता है अगर बाबा के टाइम मोबाइल होता तो बाबा 20-25 साल में संपूर्ण बन गए होते। ये मैं जस्ट मजाक के हिसाब से बता रहा हूं कि हम इतने डिपेंड हो गए इन चीजों के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, कि उसके बिना हम चल ही नहीं सकते। अगर मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज रहा है तो ही हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, अगर नहीं बजा तो हमें याद भी नहीं रहता कि हमें ट्रैफिक कंट्रोल करना है। अगर मोबाइल में मुरली आई है तो ही हम सुनेंगे, किसी का क्लास आया है तो ही हम सुनेंगे। इतनी डिपेंडेंसी हो गई है, पढ़ना कोई नहीं चाहता, अपना मनन चिंतन कोई नहीं करना चाहता, हर चीज रेडीमेड मिल रही है और रेडीमेड के ऊपर ही हम अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों के मोबाइल में अलग अलग टाइम पे ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं। ऑलरेडी मधुबन में होते हैं या सेंटर पे हैं तो वहां पे गीत बज रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक के गीत अलग बजते हैं। कहा भी जाता है कि फोन साइलेंस पे रखो, तो गीत बजते हैं तो भी ऐसा होता है कि बाबा के कमरे में भी गीत बज रहा है ट्रैफिक कंट्रोल का, लेकिन वो उसे बंद नहीं करते हैं। वो अपना ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं लेकिन दूसरों का ट्रैफिक जो डिस्टर्ब कर देते हैं। उनको ऐसे लगता है कि हम दूसरों का ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों का ट्रैफिक डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जाम कर देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों का ट्रैफिक जाम कर देते हैं। तो साधन है, यूज करने के लिए जरूर करो, लेकिन अगर उस पर हम डिपेंड होते जा रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो हमें चेक करने की जरूरत है कि हम किन किन चीजों पर डिपेंड होते जा रहे हैं, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है। तो सबसे पहला जो लिया था मोबाइल, मोबाइल के बाद में सेकेंड जो पॉइंट है मनी। अगर हम ब्राह्मण बनने के बाद भी हमारा सारा बुद्धि योग पैसे की तरफ भाग रहा है कि पैसे कमाए, ज्यादा से ज्यादा कमाए, और फिर होता है कि हम बाबा की सेवा में लगा रहे सब कुछ। जैसे अभी एक हफ्ते पहले की, थोड़े दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर आपके पास पैसे है तो आराम से आप बैंक में रख के इंटरेस्ट ले सकते हैं, खा सकते हैं उसका, और बाकी का समय जो है बाबा को याद करो, सेवा में लगाओ। लेकिन अगर हमको ये है कि ज्यादा पैसे कमाने हैं और हम बाबा के इसमें ही लगाएं सारे पैसे, नाम बाबा का होता है लेकिन इच्छा अंदर खुद की होती है, तो वो ठीक नहीं है। अगर ब्राह्मण बनने के बाद हमारे पास सफिशियंट पैसे हैं या जितना चाहिए है, तो हमें ज्यादा उसमें मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं और बाबा को दें या बाबा के इसमें सफल करें करके, है ना। नाम बाबा का होता है, सारा मदार तो ज्ञान और योग के ऊपर ही है, पढ़ाई के ऊपर ही है। लेकिन कहा ना ये होता है कि वो इतना दे रहे हैं और उन्हें इतना मान सम्मान मिलता है तो हम भी इतना दें, हमें भी इतना मान सम्मान मिले, कहीं ना कहीं ना कहीं अंदर इच्छा है कोई भरी हुई, तो वो इच्छा अपनी तरफ खींचती है। बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। तो अगर हमें ये इच्छा है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं और यज्ञ में दे, बाबा के इसमें सफल करें, तो बाबा को कोई जरूरत नहीं है उसकी, बाबा कहीं से भी अपना काम चला लेगा। लेकिन फिर कोई ये भी ना सोचे कि हम बिल्कुल ही ना दे करके, जितना जरूरी है आपके पास उतना अपने पास रखें और बाकी का सफल करें, टाइम जो है अपना सेवा में दें, ज्ञानियों के लिए अपना टाइम में करें, अननेसेसरी जो है बुद्धि उसमें न लगाए। कई बार देखते हैं कि लोग यहां वहां पे इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग चीजों में कि भाई चलो ये है 2 लाख रुपया है इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख हो जाएगा तो शांति से रहेंगे, और ऐसा होता है कि ये मालूम पड़ता है वो 2 लाख के 1 लाख हो गए, 50,000 हो गए, या वो भी चले गए, सारी कंपनी डूब गई। तो फिर अननेसेसरी बुद्धि उसमें हमारी जाती है, फिर उसमें फिर ज्ञान को लेकर आते हैं, चलो जो हुआ ड्रामा, नथिंग न्यू, ये वो जो भी है। तो ये सब झंझट करने से अच्छा है कि जितना है उसमें ही संतुष्ट रहे। बाबा ने अभी थोड़ा दिन 2-4 दिन पहले की मुरली में कहा था कि भूख कोई मरने वाला नहीं, 2 रोटी तो हर किसी को मिली जाती है, भूख कभी कोई मरते नहीं है। तो बाबा ने हमको सब कुछ दिया है ब्राह्मण बनने के बाद भी, लेकिन अगर हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती है तो उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता, तो हमें खुद को ध्यान देना होगा। तो सेकेंड है जो है मनी, थर्ड जो है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट माना व्यवस्था, हम आते हैं नए नए ज्ञान में तो सब कुछ हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर सेंटर पे देखना शुरू करते हैं, मधुबन में 2-4 बार आते हैं तो मैनेजमेंट के ऊपर हम उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम किसी कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर अगर हम उंगली उठाते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो माना हम किस पे उंगली उठा रहे हैं, हम मैनेजर पे उंगली उठा रहे हैं कि मैनेजर ठीक नहीं है इसलिए मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो इस यज्ञ का मैनेजर कौन है? बाबा है। तो हम अगर मैनेजमेंट पे उंगली उठाते हैं तो माना हम बाबा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि बाबा ये ठीक नहीं कर रहे। ड्रामा अनुसार वही चीज होनी चाहिए, हो रही है जो होनी चाहिए, उसमें अगर हम हमारा बुद्धि योग लगाते हैं तो हमारी बुद्धि खराब होगी। हम 2-4 दिनों के लिए आते हैं कहीं पर भी सेंटर पे जाते हैं, या जो लोग यहाँ पे आते हैं या जो यहाँ पे रहते भी है, जहां पे आपको जरूरी लगता है, बाबा कहता है कि आप सचमुच आपको लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए, आप केवल अपना सुझाव देकर उनको बता के बड़ों को आप फ्री हो जाओ, उसके बाद अपनी बुद्धि नहीं चलाओ। लेकिन हम उसके बाद अपनी बुद्धि चलानी शुरू करते हैं कि हमने इनको 10 बार बता दिया, 15 बार बता दिया, पिछले बार आए थे फिर भी बताया कुछ नहीं हुआ, इस बार आए बताए फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मैनेजमेंट के ऊपर अगर उंगली उठाते हैं किसी भी प्रकार की, तो माना हम बाबा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि बाबा पे हमें विश्वास नहीं है। कई बार होती भी बात है, अप डाउन होती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करके, लेकिन आप निमित्त को बता के बाबा को बता के छोड़ दो। अब ये संडे की मुरली में था ना, कोई भी प्रॉब्लम है तो बाबा ये प्रॉब्लम आप जानो और प्रॉब्लम जाने, हम तो न्यारे और प्यारे हैं। तो उसके ऊपर हमें बुद्धि हर एक की चलती है, ऐसा नहीं कि हमारी बुद्धि नहीं चलती है, किसी की कम चलती है किसी की ज्यादा चलती है। जो अष्टरतन होते हैं उनमें और जो बाकी के हैं पुरुषार्थी उनमें फर्क मेन सबसे बड़ा यह होता है कि प्रॉब्लम उनके सामने भी आ रही है और प्रॉब्लम दूसरों के सामने भी आ रही है, लेकिन अष्टरतन जो है कम से कम समय में 1 सेकंड 2 सेकंड में उस वहां पर फुल स्टॉप लगा देते हैं, और दूसरे जो हैं नॉर्मल जो है तो उनका उसमें बुद्धि योग ज्यादा चलता है, ज्यादा समय लेते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा रहे हैं, या 1 मिनट में लगा रहे हैं, 1 घंटे में लगा रहे हैं, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, या 1 वर्ष में जाके फुल स्टॉप लगता है। तो बातें हर एक के सामने आती है, लेकिन हम कितना जल्दी उसको कंट्रोल करते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो हो गया ये है मैनेजमेंट, कि हम मैनेजमेंट के ऊपर दोष उठाते हैं कि ये ऐसा है, सेंटर का हो चाहे मधुबन का हो चाहे कहीं का भी हो। तो सबसे पहले हमें अपने आप को मैनेज करना सीखना चाहिए कि बाबा ने कहा है कि जिन चीजों से आपका कोई ये नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो उन चीजों में हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए कि हमको क्या लेना देना है इसे। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट लिया हुआ है मॉनिटरिंग। जैसे स्कूल में हर एक क्लास में एक एक मॉनिटर होता है ना, तो उसका काम होता है हर एक को देखना, मतलब कंट्रोल करना, टीचर नहीं है अगर तो टीचर के एब्सेंट में देखना, क्लास की संभाल करना। तो यहां पर भी जो है हम अपने आप ही मॉनिटर बन जाते हैं, कोई हमको बनाता नहीं है, लेकिन हम अपने आप ही जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे देखना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। एक है कि आपको किसी ने सेवा दी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है और आप वो कर रहे हैं, लेकिन बिना जिम्मेवारी लिए ही, जैसे बाबा कहते ना कि देवता वो जो इशारे से समझ जाए, हाँ खुद जिम्मेवारी ले लेते हैं, हाँ खुद ही देवता, देवता वो जो इशारे से समझ जाए, तो हम सोचते हैं यहाँ पे हम देवता बन जाए करके, इशारे से बिना कोई कहे ही जिम्मेवारी ले ले, हम मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे बताए ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, वो सारी चीजें। तो उसमें क्या होता है, हमारी बुद्धि खराब होती है, दूसरे का तो कोई नुकसान नहीं होता है, होना भी हो तो अलग बात है, लेकिन हमारी बुद्धि उसमें खराब होनी शुरू हो जाती है, मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते हैं, जबकि किसी ने हमको सेवा नहीं दी है। बाबा ने कहा है कि आप अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं देखना है आपको, लेकिन हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, ये वो भी फिर माया है वो तो वो साइलेंस में जाके चेक करने की जरूरत है, वो बाबा की टचिंग नहीं है, माया की टचिंग है। कहा ना इच्छा होती है अंदर, अपने अंदर तो कहीं ना कहीं से फिर इच्छा वो बाहर आती है। तो ये हो गया मॉनिटरिंग, देखना ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सारा बुद्धि योग जो है दिन भर सवेरे से लेकर रात तक उसी में बुद्धि योग हमारा चलते रहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है मूड, अगर हमारा मूड होगा तो हम ज्ञान योग करेंगे, मूड होगा तो ये करेंगे, मूड होगा तो सेवा करेंगे, मूड होगा तो सहयोग देंगे, मूड नहीं है हाँ मूड होगा तो क्लास में आएंगे, मूड नहीं होगा तो नहीं आएंगे, बराबर। तो हमें मूड ही नहीं बनना है, वो हर एक बात जहां पे हमारा ज्ञान योग अगर डिस्टर्ब हो रहा है, अगर ज्ञान योग नहीं हो रहा है हमारा, तो वो मूड जो है ऐसा मूड ठीक नहीं है। अगर आपका ज्ञान योग हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको लगता है तो ठीक है, लेकिन मूड ही नहीं बनना है। वैसे बाबा ने कहा ना कि आप योगी हो, मूड ही नहीं हो, मूड खराब हो गया तो सेवा नहीं करेंगे। अभी तक मूड काफी अच्छा था, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया और हमारा मूड ऑफ हो गया तो हम सेवा नहीं करेंगे। अगर कहीं पे किसी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं सब लोग मिलकर आपस में, और हमको बताया गया कि आपको ये सेवा करनी है, लेकिन वहां जाने के बाद मालूम पड़ा कि ये सेवा तो किसी और को दे दी गई है, तो हमारा मूड खराब हो जाता है। हमको बताया गया शाम को आपको योग कराना है 7 से 7:30 बजे, हम बहुत अच्छे से रेडी होके गए, एकदम तैयार होके, एकदम माइंड पूरा सेट करके, और वहां जाके देखा तो कोई दूसरा ही बैठ गया योग कराने के लिए पहले से, तो हमारा मूड खराब हो जाता है। वो सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनमें हमारा मूड खराब हो जाता है, होना नहीं चाहिए। हाँ होता है ना, हम भी पुरुषार्थी है ना, होता है ना कहा लेकिन आप कितना जल्दी उसे कंट्रोल करते हैं, तो मूड ही नहीं बनना है हमें, हमें जो है योगी बनना है। तो छोटी छोटी बातों में जो है हमें हमारा मूड जो है नहीं खराब करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो लिया है मैं और मेरा, मैं और मेरे के ऊपर कई सारी बाबा की मुरलियां चल चुकी है। इस मैं को समझना, जैसे कई बार हम क्लास में सुन चुके हैं कि जो आय है ये मैं, इसको छोटा छोटा करते जाना है, लेकिन ऐसे होता है कि आय छोटा होने की बजाय बड़ा 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 होते जाता है। जैसे जैसे हम ज्ञान योग धारणा सेवा में आगे आगे बढ़ते हैं, ज्ञान में आगे चलते हैं, तो ये आय जो है बड़ा होना शुरू हो जाता है, और जितना आय बड़ा होते जाता है उतना ही फिर माय भी, माइंड मेरा, वो भी उतना ही बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये मेरी ही सेवा है, ये मुझे ही करना है, ये मेरा ही डिपार्टमेंट है, सब कुछ मुझे ही करना है, तो वो उसमें जो है हमारा आय और माय, मैं और मेरा जो है ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। एक ही डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं तो हम सेवा डिवाइड कर सकते हैं, एक ही सेंटर पे 4 लोग हैं, 4-5 बहनें हैं, तो हम सेवा डिवाइड कर सकते हैं कि ये बहन ये सेवा करे, ये भाई ये सेवा करे, लेकिन हमको ये होता है कि मुझे ही ये सेवा करनी है, क्योंकि अगर ये सेवा दूसरे को दे दी और उसका नाम मान ज्यादा होने लगा तो हमें फिर ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है फिर, तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि एक ही बस हमको ही सब सेवा करनी है और किसी को करने ही नहीं देना है, या रखेंगे भी तो ऐसे लोगों को रखेंगे सेवा में जिनको कुछ आता ना हो, तो बोलेंगे कि भाई ये तो ऐसा ही है, सारा हमको ही करना पड़ता है, हम क्या करें उसमें। अंदर खुद की इच्छा है कि हमारे से कोई आगे ना बढ़े, लेकिन कहने के लिए ये होता है कि भाई ये तो अनट्रेंड है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये तो क्या करें अभी करके, ऐसे तो जानबूझ के ऐसे लोगों को रखते हैं कि जिनको कुछ आता ना हो, और फिर लोग हर बात के लिए हमें ही बुलाए, हर बात में हमारा ही नाम होना चाहिए कि उसको बुलाओ, उसके बिना काम ही नहीं चल रहा है, उसके बिना तो सारा काम ही रुक रहा है हमारा। तो ये मैं और मेरा का है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि मेरा के लिए कि देह से ही देह के सब संबंध, तो जो भी चीजें हैं देह और इस देह से रिलेटेड, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, हर एक चीज जो है मैं और मेरे में आती है। तो इस मैं और मेरे को सूक्ष्म में जानकर हमें कम करना है। अभी सूरज भाई का भी जो क्लास था अभी 19 तारीख को, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये मैं और मेरे की वजह से होता है कि हर जगह लोग जो है बॉसिंग करने लगते हैं, हर जगह सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं उसी हिसाब से चलना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं वही होना चाहिए। कई चीजें होती है कि जहां पे होना जरूरी भी है कि होना ही चाहिए उस तरह से, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है कि जहां जरूरी नहीं है, लेकिन हम उसमें ये करेंगे कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं वैसे ही होना चाहिए, ये ऐसा ही क्यों रखा है, ये वैसा ही क्यों रखा है। तो जितना हम मैं और मेरे में जाएंगे तो हमारी बुद्धि खराब होती जाएगी। ये समय ऐसा है कि जितना हो सके झंझटों से मुक्त होने का समय भी, तो थोड़ा दिन पहले की मुरली में था ना बाबा ने कहा कि कोई नए बंधन बनाने नहीं है, बंधनों हाँ, बुद्धि किसी में फंसानी नहीं है, बंधन कम करने का समय, नए बंधन नहीं बनाने अभी। ठीक है, कोई बन जाते हैं ड्रामा अनुसार, या किसी के साथ हिसाब किताब हो, कोई आ भी जाता है तो बात अलग है, लेकिन नए बंधन हम खुद से बनाए जहां हमारी बुद्धि फंसाने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके हर चीज से अभी जो है उपराम होने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ देवे, ज्ञान सेवा वगैरह, और फिर बोले कि उपराम होने ऐसा नहीं, लेकिन जहां जरूरी नहीं है वहां पे अपनी बुद्धि नहीं फंसानी है। चार लोग हैं आपके पास में, दो लोग हैं तो सेवा डिवाइड करके आपस में हम चला सकते हैं, लेकिन हर जगह मुझे ही करना है तो खुद का मान शान चाहिए होता है। तो ये हो गया मैं और मेरा। तो मैं और मेरे के बाद में नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट लिया हुआ है, मर्डर। मर्डर माना जैसे बताते ना खून। एक मुरली बाबा ने बताई है, उसमें पांच टाइप के कपड़े बताए थे, ड्रेस, पांच टाइप के ड्रेस बताए हुए थे। तो यहाँ पे हम ब्राह्मण बनने के बाद कौन सा मर्डर करते हैं? विवेक का खून करते हैं। हमें पता है, एक तो स्थूल तो है, सूक्ष्म तो है, लेकिन स्थूल भी है। हमें पता है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं। बाबा मुरलियों में बाबा कहता है कि कोई चीज बिना उठा पूछे उठा के खाना भी चोरी है, भले आप सेंटर पे हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन हम उठा के खा लेते हैं बिना किसी को पूछे, उसकी चीज वहां से ले लेना, और हम ये सोचते हैं कि चलो बाद में बता देंगे उसको, और हम बाद में बताना भूल जाते हैं, और उस व्यक्ति के संकल्प चलने लगते हैं वहां पे कि ये चीज यहां पे रखी थी कहां गई यहां से। तो वो जो संकल्प चल रहे हैं उसका बोझ किस पे चढ़ेगा? सारा हम पे चढ़ेगा। नहीं वो बात अलग है, लेकिन एक नियम कायदे के हिसाब से चलना चाहिए। अगर आपको कह दिया है कि भाई आपको पूछने की जरूरत नहीं है तो ठीक है, लेकिन जब तक आपको कहा नहीं जाए तब तक आपको पूछना चाहिए। तो हम वहां पे मर्डर करते हैं। अभी थोड़ा दिन पहले हमने देखा था कि एक माता जी अच्छी दूसरे का मोबाइल रखा था चार्जिंग में और वो उठा के लेके चली गई जबकि उसके हाथ में खुद का मोबाइल है, फिर भी वो दूसरे का मोबाइल लिखा था चार्जिंग में, एक मिनट रुकी, देखा यहां वहां पे कोई नहीं आ रहा है एकदम, हमने देखा क्या उठाया मोबाइल सीधा जेब में डाला और बस लेके चली गई। जो भी है तो हम मर्डर करते हैं, पता है हमें। मैंने कहा ना हर एक चीज स्थूल से शुरू होके बाद में सूक्ष्म में जाती है, अंदर संकल्प है हमारे तो ये चीजें बाहर निकल रही। तो पहले जो चोरी जो पहले करनी शुरू होती है स्थूल से होती है और उसके बाद सूक्ष्म में जाती है फिर। तो अगर हम मर्डर करते हैं, पता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, उसके बाद भी हम जानबूझ के करते हैं तो वो ठीक नहीं है ब्राह्मण बनने के बाद में, कि छोटी छोटी गलतियां जो है उसके बाद में जो है बड़ी बननी शुरू हो जाती है। तो ये मर्डर। तो बाकी का कल सुनेंगे सेकेंड पार्ट में। तो आज इसमें हमने सात बातें सुनी, कौन सी सुनी? पहला है मोबाइल, मनी मैनेजमेंट, मूड मॉनिटरिंग, मैं और मेरा, और मर्डर। ओम शांति।